मामूली से ट्रॉफी के लिए तुमने आज अपनी इतनी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन मिस कर दी। इतने टाइम से हमें झूठ बोल रहे हो। हमारे मना करने पर भी तुमने इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और हमसे सब छुपाते रहे। आज मैं इस फसाद की जड़ ही खत्म कर दूंगा। मैं अभी तुम्हारे कॉलेज के डीन से बात करके तुम्हारा नाम उस कॉम्पिटिशन से हटा दूंगा। अब तुम किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। कायरव, मैं तुम्हें ये आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजा, तुम्हारी स्टडीज़ पर इतना इन्वेस्ट किया है, इसलिए नहीं कि तुम इन बेकार कामों में इंटरेस्ट लो। इन फालतू चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। तुम्हें आगे चलकर हमारा फैमिली बिजनेस संभालना है, तो अपना ध्यान अपनी स्टडीज़ पर लगाओ। अगर तुम अभी भी नहीं रुके और हमारे खिलाफ गए तो मैं तुम्हें इंडिया से बाहर भेज दूंगा। फिर तुम दोबारा कभी अपनी दादी का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। मिस्टर रायचंद की धमकी सुनकर कायरव अविश्वास भरी नज़रों से उन्हें देखता ही रह गया। डैड, कायरव ने फिर कुछ कहना चाहा, पर मिस्टर रायचंद ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और कठोर लहजे में बोले, इस मैटर पर अब मैं और आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहता। मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया है। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तुमने अपने सिंगिंग के शौक को नहीं छोड़ा, अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस और रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, तो हम तुम्हें यहाँ से दूर भेज देंगे। और ये तो भूल कर भी मत सोचना कि वहाँ जाकर तुम जो चाहे वो करोगे, क्योंकि वहाँ भी हमारी नज़र हर पल तुम पर होगी। जैसे ही तुम हमारे अगेंस्ट गए, हम तुम्हारे वापसी के सारे रास्ते बंद कर देंगे। बहुत प्यार करते हो ना तुम अपनी दादी से, उसी दादी को देखने के लिए तरसा देंगे तुम्हें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारी बात मानो। इन फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो और अपना पूरा ध्यान स्टडीज़ में लगाओ। कॉलेज से फ्री होकर कंपनी आओ और काम सीखो। आगे चलकर बिजनेस तुम्हें ही संभालना है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मिस्टर रायचंद ने अपने हाथ में मौजूद ट्रॉफी को देखा। उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया। सख्ती से अपना फैसला सुनाने के बाद उन्होंने गुस्से में ट्रॉफी को फर्श पर फेंका और वहां से चले गए। कायरव सुन सा खड़ा बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों के सामने वो ट्रॉफी चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गई, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी आंखों में सजे मासूम सपने टूटकर बिखर गए थे। मिस्टर रायचंद के जाने के बाद मिसेस रायचंद, जो इतनी देर से अपने रूम के पास खड़ी सारा तमाशा देख रही थीं, वो कायरव के पास आ गईं। कायरव, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जो तुम्हारे डैड कहें वही किया करो, फिर क्यों तुम हर बार उनके अगेंस्ट जाकर उन्हें गुस्सा दिलाते हो? कुछ गलत तो नहीं कहते हो? तुम हमारे इकलौते बेटे हो, रायचंद खानदान के वारिस हो। आगे चलकर रायचंद एम्पायर को तुम्हें ही संभालना है, जैसे तुम्हारे दादा के बाद तुम्हारे डैड ने संभाला था। उन्होंने खुद को इस पोस्ट के लायक बनाया था और तुम्हारे लिए भी यही चाहते हैं। क्या मिलेगा तुम्हें इन सब में अपना वक्त बर्बाद करके? अगर तुम्हें सिंगिंग का शौक है तो उसे शौक ही रहने दो। कभी मन किया तो गा लिया, पर इसमें तुम्हारा करियर नहीं बन सकता। अगर तुम ये सब करोगे तो हमारा इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कौन संभालेगा? अपनी जिद छोड़ दो। चार गाने गाकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बस स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। लाखों सिंगर्स हैं, उनकी भीड़ में खोकर रह जाओगे। खुद को ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ। इस लायक बनो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में झुके। अपने डैड को देखा, आज वो उस पोजीशन पर हैं कि बड़े बड़े सिंगर्स और सेलिब्रिटीज उनके एक ऑर्डर पर हमारे घर के बाहर खड़े नजर आएंगे। तुम्हें भी उनके जैसा बनना है। वो बोलती रहीं, पर कायरव ने एक बार भी नजर उठाकर उन्हें देखा नहीं, कोई रिस्पांस नहीं किया, बस सर झुकाए चुप सा खड़ा वहां बिखरे अपने सपनों को देखता रहा। मिसेस रायचंद भी उसे समझाकर वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ दादी, कायरव और कुछ सर्वेंट्स रह गए थे, जो छुपकर सब देख रहे थे। आरव बेटा, दादी ने मोहब्बत से उसे पुकारा। कायरव ने सर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखें खूनी रंग में रंगी थीं, जिन्हें देखकर एक बार को दादी भी डर गईं। नहीं बनना मुझे उनके जैसा, नहीं है मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में, मुझे सिंगर बनना है। स्ट्रगल करने से डरता नहीं हूं मैं, मुझे उनके पैसे, पावर या कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना रास्ता खुद बनाने की काबिलियत रखता हूं। फिर डैड क्यों मेरे सपनों को तोड़ना चाहते हैं? ये मेरी लाइफ है, फिर मुझे अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुनने का राइट क्यों नहीं है? क्यों कोई ये समझने को तैयार नहीं कि म्यूज़िक मेरी मोहब्बत है? क्यों है सब मेरे ड्रीम के अगेंस्ट? डैड को बिजनेस में इंटरेस्ट था तो उन्होंने वो किया, फिर जब मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो मैं इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? क्यों सब मुझे ज़बरदस्ती बिजनेस में घुसाना चाहते हैं? उन्हें क्यों नज़र नहीं आता कि मेरी खुशी म्यूज़िक में है, मैनेजमेंट की पढ़ाई में नहीं? क्यों दादी, क्यों उनके लिए मेरी खुशी, मेरे सपनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? क्यों हर बार वो बस अपनी इच्छा मुझ पर थोपते रहते हैं? क्यों मेरी लाइफ को कंट्रोल करने और मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं? मुझे नहीं बनना उनके जैसे बिजनेसमैन, मुझे सिंगर बनना है। मैं एक सॉन्ग भी गाऊंगा तो उससे मुझे जो खुशी और सुकून मिलेगा वो उनकी करोड़ों की बिजनेस डील से नहीं मिलेगा। क्यों वो ये बात समझने को तैयार नहीं है? देखा ना आपने दादी, मुझसे अपनी बात मनवाने के लिए, मुझे मेरे सपनों से दूर करने के लिए डैड मुझे धमकी देकर गए हैं कि मुझे आपसे भी दूर कर देंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कायरव के शब्दों में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट एक साथ छलक रहे थे। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरा दर्द से सना था। आरव बेटा, दादी ने जैसे ही उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कायरव ने अपने कदमों को पीछे घसीट लिया।
नहीं दादी, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैं जानता हूँ हर बार की तरह आप भी मुझे ही समझाएंगे कि जो डैड चाहते हैं वही करूँ, पर मैं नहीं मानूंगा उनकी बात, नहीं करूंगा उनकी कंपनी ज्वाइन, नहीं छोड़ूंगा सिंगिंग, चाहे उसके लिए मुझे ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। वैसे भी यहाँ किसी को मुझसे प्यार नहीं है, किसी के लिए मेरे सपने मेरी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती, किसी को मेरे दर्द और तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मेरी परवाह नहीं है, सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो आपसे मैं भी सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। डैड मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं ना, मैं खुद आप सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। आरव, आरव बेटा सुनो तो सही, आरव गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाओ बेटा। बेटा आप अपनी दादी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? दादी रोकती रही पर कायरव गुस्से में घर से बाहर निकल गई। दादी उसके पीछे पीछे बाहर तक गई, उसे समझाने की कोशिश भी की, पर आज कायरव इतने गुस्से में था कि उनकी भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था, उसकी बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो गई थी। कायरव ने बाइक स्टार्ट की और देखते ही देखते रायचंद मेंशन से बाहर निकल गया। दादी पीछे परेशान सी उसे रोकती रह गई, लेकिन वो जा चुका था। दादी परेशान सी अंदर आकर उसे फोन लगाने लगी, पर पूरी रिंग जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुई। हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना, गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। मंदिर के सामने बैठी दादी ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने बैठी हाथ जोड़े कायरव की सलामती की दुआ कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और उनमें खुला था अजीब सा डर। वो भी मजबूर थी, जो ना पहले कायरव के लिए कुछ कर सकी और ना आज कर पा रही थी। उन्होंने मिस्टर रायचंद को भी फोन किया, पर वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे और यहाँ उनके दिल में डर बैठता जा रहा था। कायरव अपनी बाइक फुल स्पीड में चला रहा था, हवा उसके बालों में खेल रही थी और उसके दिल की धड़कन हर पल तेज हो रही थी। गुस्से से उसका चेहरा चल रहा था, दर्द आंखों में नमी बनकर उतर आया था। जल्दबाजी में उसने हेलमेट तक नहीं लगाया था, ऐसे ही निकल आया था और अब गुस्से में अनजान सड़कों पर बाइक दौड़ाता जा रहा था।
मिस्टर रायचंद की धमकी, मिसेज रायचंद की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसकी बीती जिंदगी के वो पल जब जब उस पर उनकी मर्जी थोपी गई थी, जब जब उसे वो चीज छोड़ने पर मजबूर किया गया था जिससे कभी उसे प्यार था, वो सभी पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। ट्रॉफी के टूटकर बिखरे टुकड़े उसके मन में चुभ रहे थे। आज दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। कायरव नहीं जानता था कि वो आगे क्या करने वाला है, कहाँ जा रहा है, जिंदगी से क्या चाहता था। वो बस इन सब से बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सुनसान सड़कों पर पहुंच गया, जहां दोपहर होने की वजह से दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कायरव ने जैसे ही बाइक टर्न की, अचानक टायर स्लिप कर गया। उसने जितनी जल्दी हो सके बाइक को संभालने की कोशिश की, पर कुछ कर न सका। बाइक फिसलती हुई सीधे आगे बढ़ी और कायरव का सिर डिवाइडर से टकरा गया। देखते ही देखते सड़क खून के लाल रंग में रंग गई। कायरव की खून से सनी पलकें थरथराईं, होंठ कांप उठे। बंद आंखों के आगे फर्श पर बिखरी ट्रॉफी की झलक आई और आंखों के कोर से आंसू की एक बूंद फिसलकर उसके खून में मिल गई। इसके साथ ही उसका शरीर एकदम शांत पड़ गया। कानों में किसी की मीठी आवाज़ गूंजने लगी। टू बी कंटिन्यूड।